सूरत खुद के बारे में चंद बातें। पहली बात है कि सूरत खुद पूरी स्टोरीज है। जब इंसान बहुत थका और उसका कुछ समझने को दिल ना चाहे तो दिल चाहता है कि कहानी सुनाई जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का वालों ने इतना सताया कि आप दुखी होते थे तो अल्लाह पिछले अंबिया की कहानियां सुनाते थे। सूरत खुद में आपको यही अंदाज है। एक मौके पे आपके सर में चंद सफेद बाल देखने पर किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी आप बूढ़े हो गए, तो आपने फरमाया हाँ, शैबतनी हूदुन व अखवातुहा, हाँ मुझे सूरत हूद और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया। वजह क्या है? कौमों पर अजाब की बातें। किस गम में अल्लाह के नबी बूढ़े हो रहे थे कि कुरैश जो मेरा ही खानदान है इस पे भी यही अजाब आएगा। ये बिल्कुल वही सोच है जो कुरान पढ़ने के बाद हम सबको अपने प्यारों के लिए लग जाती है। जिन्होंने भी कुरान नहीं पढ़ा, हमारे बच्चे, घर वाले, बहन भाई, दोस्तें, जो भी तक सरपट भाग रहे हैं इधर उधर, तो ऐसे वक्त में इंसान कहते हैं अल्लाह अगर इसी हाल में ये जीते हुए दुनिया से चले गए तो क्या होगा। और इस सूरत में हम कौमे नूह का किस्सा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इस सूरत में इस्तिग़फ़ार और रिस्क हासिल करने की बात बहुत आएगी और आप देखेंगे कि बंदगी के नमूनों में अल्लाह ताला हमें दिखाएगा कि कौमे नूह में से सिर्फ चंद लोग बचे थे लेकिन बाद में उन्हीं की नस्ल में फिर बिगाड़ आ गया। और फिर इसी में ये भी बात बताई जाएगी कि बिगड़ी हुई औलादों को कैसे डील किया जाए। और ये भी पता चल गया कि नेक लोगों की औलादें भी बाज दफा उनके लिए नासूर बनती हैं। फिर इसी तरह तदबीर और तकदीर का मुकाबला, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें तकदीर से लड़ने की, अल्लाह के हुक्म को गालिब आता देखते हैं। हजरत नूह के बेटे की इधर हम मिसाल देखेंगे। 12th पारे में आपको तकदीर और तदबीर का बहुत मामला दिखेगा। पहले हम हजरत नूह और उनके बेटे की कहानी पढ़ेंगे सूरत हूद आयत 42 से 47 में। फिर उसके बाद हम अंबिया कराम का अपनी कौमों को तबाह होने से ना बचाना देखेंगे हर कौम के किस्से में। और सुपारे पारे के आखिर में हम फिर हजरत यूसुफ और याकूब के किस्से में पढ़ेंगे कि याकूब भी अपने बच्चों को तकदीर की सख्ती से नहीं बचा सके और ये भी कि पाक दामन होने के बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो खुद पर धब्बे लगने से खुद को नहीं बचा सके। और हत्ता कि आयत 42 की में हम पढ़ेंगे कि हजरत यूसुफ ने पूरी कोशिश की कि कैदी जाकर उनकी बात बादशाह से करे लेकिन तकदीर गालिब आ गई और जितना वक्त अल्लाह ने हजरत यूसुफ के लिए जेल में रखा था वो हुआ। बारवा बारवा हम सूरत हूद को ही साथ अगर इसको रिलेट कर लेते हैं तो इसका अंदाज क्या होगा? शुरू का हिस्सा हम फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि स्टोरीज हैं और दूसरी वजह यह कि इस पारे के आखिर में बहुत बात होगी। और आप सबको भी मैं ये कहूंगी सूरत यूसुफ आ रही है, अपने प्यारों को बुला लें। वैसे आते वही हैं जिनको अल्लाह ने लाना होता है, मैं कह भी दूं तो मैंने देखा फर्क नहीं पड़ता, शायद आप भूल जाते हैं बुलाना या जिनको आप बुलाते होंगे उनकी कोई कमिटमेंट होती होगी। लेकिन सूरत यूसुफ यूथ को सुनाने वाली है। फितने हो जब चारों तरफ गुनाह की दावतें देने वाले लोग हों तो कैसे यंग बच्चे बच्चियां अपनी इज्जत और अपनी इज्जत को पाक करें, ये इंशाल्लाह सूरत यूसुफ में पढ़ेंगे। अभी चलते हैं हम सूरत हूद पे। बहुत सिंपल है, आप मेरे साथ साथ रहें, स्टोरी की तरह सुनेंगे तो स्टोरी के तो बीच में बोलते ही नहीं है। और साथ साथ जहाँ छोटी छोटी बातें हमारे अमल की होंगी उसको हम ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिल्लदुन हकीमिन खबीर। फरमान है जिसकी आयतें पुख्तार मुफस्सल इरशाद हुई हैं एक दाना और बाखबर हस्ती की तरफ से। मैसेज क्या है? कि तुम नाबंदगी करो मगर एक अल्लाह की, मैं उसकी तरफ से तुमको खबरदार करने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी। और ये कि तुम अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ, वो एक मुद्दत खास तक तुमको अच्छा सामान्य जिंदगी देगा और हर साहिबे फजल को इसका फजल अता करेगा। लेकिन अगर तुम मुंह फेरोगे तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। तौबा इस्तिग़फ़ार रिस्क के दरवाजों को खोल देती है, आजमा के देख लें। एक वाक्य मैंने भी चंद दिन पहले भी दर्स में सुनाया, आपको भी सुना देती हूँ। इमाम अहमद रहमहुल्ला बहुत बड़े इमाम थे, एक दफा सफर में किसी मस्जिद में पहुंच गए। वो लोग उनको पहचाने नहीं। इन्होंने कहा क्या मैं यहाँ रात मस्जिद में बसर कर लूँ क्योंकि मैं सफर में हूँ, मैं थका हुआ। उन्होंने कहा नहीं, हमारी मस्जिद का रूल नहीं है कि यहाँ कोई ओवरनाइट रहे। अभी ये बातें चल रही थी तो नमाजियों में एक शख्स जो नानबाई था, बेकर था कह लीजिए, वो कहने लगा कि मैं इनको घर ले जाता हूँ। उन्होंने कहा ले जाओ। अब उसको नहीं पता मेरे साथ कौन है, वो चल पड़ा। इमाम साहब उसके साथ गए, घर गए, उसने दरवाजा खोला, आपको बिठाया, इंतजाम किया। कहने लगा बस एक काम है कि मैं रात को काम करता हूँ तो आप डिस्टर्ब ना हो। उन्होंने कहा ठीक है। अब इमाम अहमद क्या देख रहे हैं कि वो आटा निकालता है और साथ कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर आटा गूंदता है अस्तगफिरुल्लाह, पेड़ा बनाता है अस्तगफिरुल्लाह। अब इनसे रहा ना गया, कहने लगे ये तुम हर बात में इस्तगफार करते हो, क्या तुम्हें इस इस्तगफार ने कोई फायदा भी दिया? तो कहने लगे क्या बताऊं, मैं तो इतना गरीब था, कहीं काम करता था, पैसा भी नहीं था, लेकिन इस इस्तगफार की बदौलत से आज मेरा अपना कारोबार है। मैंने जब भी इस्तगफार पढ़ के कोई दुआ मांगी मेरी कबूल हुई। कहा अच्छा सारी कबूल हो गई है? कहता है सारी हो गई, बस अभी एक नहीं कबूल हुई। कहा वो क्या नहीं हुई? कहने लगा कि मैंने सुना है कि फलां शहर में एक बहुत बड़ा इमाम है और उनका नाम अहमद है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो कभी मेरे मेहमान बने, पर मुझे पता है कि मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि वो मेरे मेहमान बने, लेकिन मैं अब इस्तगफार इस नीयत से करता हूं कि अल्लाह मुझे इमाम अहमद का मेहमान बना दे और वो मेरे घर में आए। तो इमाम साहब बोले कि फिर तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, मैं ही वो शख्स हूं जिसके मिलने की तुम दुआ कर रहे हो। तो याद रखिए इस्तगफार बड़ा प्यारा जुमला है। कहा अच्छा तुम्हारे लिए अल्लाह आज मुझे लेकर आया। तो याद रखिए इस्तगफार से हर गुना, तकलीफ, बीमारी, परेशानी जाती है। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों को सामने रख इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन कुछ लोगों को इस्तगफार करना भी बुरा लगता है और वो दीन की महफिलों से भी किस तरह इठलाते हुए उठते हैं। फरमाया ला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम, देखो ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि इससे छुप जाएं, खबरदार ये जब अपने कपड़ों से अपने आप को ढांकते हैं अल्लाह इनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी, वो तो इन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पारा नंबर 12, 12 और आयात उम्मा, यानी उम्मत लफ्ज जिसके अंदर भी आता है या उस रूट से जो आयात शुरू होती हैं, उसमें सबसे पहले सूरत हूद की आयत नंबर 8 है, वलैन अखरनाहुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मादूदा, और अगर एक मुद्दत मुईन तक हम इनसे अजाब को रोक भी लेते, लयकूलुन्ना, तो अलबत्ता वो कहते कौन सी चीज इस अजाब को रोके हुए है, देखो जिस रोज वो इन पर वाकई होगा फिर टलने का नहीं, और जिस चीज के साथ ये मजाक करते थे वो इनको घेर लेगी। क्या पता चला कि अल्लाह ताला के अजाब उम्मतों पर आने के लिए मुंतजिर होते हैं और अल्लाह ताला उसको रोक लेते हैं। अगर लोग उस अजाब से बचने की कोशिश नहीं करते, तौबा नहीं करते, तो अल्लाह ताला के आए हुए अजाब को कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे और आपको इसमें खौफ महसूस करना है कि कहीं उम्मत मुस्लिमा की पकड़ के फैसले भी ना हुए हों और हम फिर उसके बाद तौबा भी करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगली आयत सूरत हूद की आयत नंबर 17, 17 है, अफमन कान अला बैजिनतिम मिर रब्बिही व यतलूहु शाहिद मिनहु वमिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामं व रहमा, भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील रखते हों और इनके साथ एक आसमानी गवाह भी इसकी जानिब से हो, और इससे पहले मूसा की किताब जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे? यही लोग इस पर ईमान लाते हैं, और जो कोई और फिरकों में से इससे मुनकर हो तो इसका ठिकाना आग है। तो तुम इस कुरान से शक में ना होना, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। इसमें बहुत बड़ी बड़ी खबरें जिसमें जो इस वक्त बात है वो क्या, किताब मूसा इमाम व रहमा। यहाँ आप देख रहे हैं कि लफ्ज इमाम गुजरा है, लफ्ज वही है उम्मत, तो इमाम और उम्मत और उम ये सब एक है कि पहले दौर में तौरात अब लोगों की इमाम थी, और इमाम वो होता है जिसको फॉलो किया जाए। आज के दौर की किताब मुसलमानों के पास है, दुआ कीजिए कि आज मैं और आप इसको इमाम बना लें। और अल्लाह के नबी सल्लम की बहुत प्यारी खुशखबरी है कि मन जालहु इमामन, जिसने इस कुरान को इमाम बना लिया ये किताब उसको जन्नत में ले जाएगी, और जिसने इसको अपनी पुश्त के पीछे डाल दिया तो ये उसको हांक कर जहन्नुम में ले जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें किताब को अपना इमाम बनाने की तौफीक अता फरमाए। अगली आयत सूरत हूद की आयत नंबर 48 है, قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم वाला उममिम्मम्मा व उममुम सनुमत्तियुहुम सुम्म यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। हुक्म हुआ कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और जमातें भी होंगी जिनको हम दुनिया के फवायद से महफूज करेंगे, फिर इनको हमारी तरफ से अजाब अलीम मिलेगा। क्या पता चला इसमें कि अल्लाह ताला ने दो दफा बात की। उमम लफ्ज ना उम्मतुन की जमा है, और उममुन दोबारा उसी लफ्ज में आया। इसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती के पार लगने की बात है और उन बरकतों की जो उस कौम पे उतरी। मेरे और आपके लिए इसमें एक बहुत गहरा सबक है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया में से 60-70 लोगों को क्यों बचाया तूफान नूह में से, क्योंकि वो अल्लाह की बात मानते थे, अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह की भी मानते थे। तो आज हमारा ईमान होना चाहिए कि अगर हम अल्लाह सुबहाना तला की बात मानेंगे एक उम्मत होने के नाते, तो दुनिया में जो भी मुश्किलात आए, किसी पे कुछ भी होगा, अल्लाह सुब्हानहु तआला हमें उसमें बचा लेंगे, और अल्लाह ताला ऐसा ही करे। अगली आयत आयत 118 है सूरत हूद। वलो शा रब्बुक लजअलन नास उम्मतन वाहिदा वला यजालून मुख्तलिफीन। और अगर आपका रब चाहता तो तमाम लोगों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो तो हमेशा ही इख्तलाफ करते रहेंगे। क्या पता चला कि सारी दुनिया के लोग तौहीद पे और हक पे जमा नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करते रहेंगे वो लोग जो हक पर हैं। और एक वक्त आएगा कि जिनके अंदर जरा सी भी खैर थी अल्लाह ताला उसको हक पे जरूर ले आएगा। फिर आखिरी आयत इस पारे के एतबार से आयत नंबर 45 है सूरत यूसुफ की। वकाल अल्लज़ी नजा मिन्हुमा वद्दकरा बादा उम्मतिन अना उनब्बियुकुम बितावीलिही फारसिलून। अब वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई, बोल उठा कि मैं आपको इसकी ताबीर लाकर बताता हूँ, मुझे जेल खाने में जाने की इजाजत दे दीजिए। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लफ्ज उम्मतिन मुद्दत के मानों में एक टाइम पीरियड, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ही लफ्ज डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इन सारी चीजों पर गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। यहाँ से 12वां पारा शुरू होता है। जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। फिक्र ना किया करें अपने रिस्क की, कीड़े को भी वही खिलाता है, पत्ते खाने वाले कीड़े को वो खिलाता है, मुझे और आपको क्यों नहीं खिलाएगा। और यही इस्लाम का हुसन है। आप देखिए कि यहाँ मतान हसना की बार बार बात आ रही है। दीन और दुनिया की दौलत जिसको इकट्ठी मिल जाए वो मताए हसन है, इधर और नहीं है। आप ये ना सोचा करें कि जिसको अल्लाह ने दीन दे दिया अब उसको दुनिया नहीं देगा। कॉन्सेप्ट आज यही है, झूठा कॉन्सेप्ट है। और ये भी गलत है कि जी दुनिया कमानी है पहले दीन को पीछे रखो। खुशकिस्मत तरीन वो लोग हैं जो दीन की दौलत से भी माला माल है और दुनिया की दौलत से भी, लेकिन बदकिस्मत वो लोग हैं जो मताए हसन को मताए गुरूर में बदल लेते हैं। ये कब बदलता है? जब दुनिया की दौलत को नाफरमानी से हासिल करें तो मताए हसन की बजाय मताउल गुरूर, फरेब का सामान है। बज़ाहर आप समझते हैं वो चीजें आपकी, लेकिन आपकी नहीं होती, आपके नाम सिर्फ लाइबिलिटीज होती हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मताए हसन अता फरमाए, और फरमाए जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो, जिसके मुतालिक वो ना जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक साफ दफ्तर में दर्ज है। वही है जिसने आसमानों जमीन को 6 दिन में पैदा किया, जबकि इससे पहले इसका अर्श पानी पर था। क्यों पैदा किया? ताकि तुमको आजमाए, लिया ब्लुआ कुम, ताकि तुमको आजमा कर देखे क्या अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। अब अगर है नबी आप कहते हैं कि लोगों मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे तो मुनकरीन फौरन बोल उठते हैं ये तो सिर्फ जादूगरी है। और अगर हम एक खास मुद्दत तक इनकी सजा को टालते हैं तो वो आखिर कहने लगते हैं आखिर किस चीज ने इसे रोक रखा है। सुनो जिस रोज इस सजा का वक्त आ गया तो किसी के फेरे न फिर सकेगा, और वही चीज इनको घेरेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद फिर से महरूम कर देते हैं, इमेजिन करें कभी नेमत छीनी हो तो उसके बाद क्या हुआ। फरमाए तो वो मायूस हो जाता है और नशुक्री करने लगता है। और अगर इस मुसीबत के बाद जो इस पर आई थी हम इसे नेमत का मजा चखाते हैं तो कहता है मेरे तो सारे दिल दर दूर हो गए, फिर वो भूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस ऐप से अगर कोई पाक है तो वो बस वो लोग जो सब्र करने वाले और नेकुकार हैं, और वही हैं जिनके लिए दरगुजर भी है और बड़ा अजर भी है। क्या पता चला? मुसीबत और राहत इम्तिहान के दो पर्चे। अजरे कबीर लेना है तो सब्रे कबीर और शुक्रे कबीर करना होगा। जो दुनिया के लिए मेहनत करे अल्लाह उसे दुनिया में भी फायदा देगा। तो ऐ नबी कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो। हाईलाइट कीजिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं हम कुरान जरूर सुनते हैं, अगर इसमें इतनी तो टोक बातें ना होती। कुरान इज वेरी जजमेंटल, और ये फलां कुरान पढ़ाने वाले ये बहुत ही खुली बात कर देते हैं। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह क्या मशवरा दे रहे हैं, आप इन चीजों में से किसी चीज को बयान करना ना छोड़ो जो आपकी तरफ वही की जा रही है। किसी दाई दीन को अल्लाह की किताब में से कोई मसला ना तो ओवर हाईलाइट करना चाहिए और ना हाइड करना चाहिए। बैलेंस रहते हुए जिस शिद्दत से अल्लाह ने पेश किया पेश कर दें। कोई मानता है तो मान ले, नहीं मानता आपका क्या जाता है। इसीलिए फरमाया इस बात पर तंग दिल हो कि वो कहेंगे कि इस शख्स पर कोई खजाना क्यों ना उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तो आप तो महज खबरदार करने वाले हो, आगे हर चीज के का हवालेदार अल्लाह ताला है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है? कहो अच्छा ये बात है, तो इस जैसी घड़ी भी 10 सूरतें तुम बना लो। तीसरा चैलेंज है कुरान में, कुरान के मुतल्लिक। अल्लाह के सिवा और जो जो तुम्हारे माबूद है इनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम इन्हें माबूद समझने में सच्चे हो। अब अगर वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। फिर कई समरे हक के आगे सरे तस्लीम खम करते हो, क्या पता चला तनकीद के डर से हक को ना छुपाओ। लोगों की हिदायत पे आने या ना आने की जिम्मेदारी आप और मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन दूसरों को हक बताना ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए लोग ना माने आप हक बयान करते रहे। मन का नयुरीदुल हयात दुनिया वजीनतहा नुवफ्फी इलैहिमा मा लहुम फीहा। जो लोग बस इस दुनिया की जिंदगी और इसकी खुशनमाइयों के तालिब होते हैं, इनकी कारगुजारी का सारा फल हम इनको यहीं दे देते हैं, और इनमें इनके साथ कुछ कमी नहीं की जाती। मगर आखरत में ऐसे लोगों के लिए आपके सिवा कुछ नहीं। वहां मालूम हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मिलिया मेट हो गया, और अब इनका सब किया धरा महज बातिल है। क्या पता चला, आखरत का पौधा दुनिया की जमीन पर लगाया तो मुरझा जाएगा। दुआ कीजिए हमें इस दुनिया में अमल करके आखरत में फल तोड़ने वाला बनाए। बदबख्त है कि जिसने कहा दुनिया में सारे फल तोड़ लूं और आखरत में खाली हाथ रह गया। फिर भला वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत पर था, इसके बाद एक गवाह भी अल्लाह की तरफ से शहादत की ताईद में आ गया, और पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत के तौर पर आई हुई भी मौजूद थी, क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह से इसका इनकार कर सकता है? इशारा कुरान की तरफ है। कुरान पढ़ने के बाद क्या बंदा फिर दुनिया परस्त हो सकता है? ऐसे लोग तो इस पर ईमान ही लाएंगे, और इंसानी गिरोहों में से जो कोई इसका इनकार करे तो इसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोजख है। पस से पैगंबर आप इस चीज की तरफ से किसी शक में ना पड़े, ये हक है। देखिए अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला बार बार यकीन दिला रहे हैं, ये जो आप पे नाजिल हो रहा है ये हक है। ये क्यों कहना पड़ता था? क्योंकि लोग रिजेक्ट कर रहे थे, ऑब्जेक्शंस लगा रहे थे, तो शक पड़ता है ना कि ये भी बुरा कह रहा है, वो भी गलत कह रहा है, वो भी कह रहा है, तो शायद मैं ही गलत हूं। तो कहा नहीं, आप हक पर हैं, ये हक है आपके रब की तरफ से। मगर अक्सर लोग नहीं मानते। याद रखिए कि जब फितरत जिंदा होती है तो किताब रहनुमा बन जाती है, और जब फितरत प्ल्यूट हो जाती है तो किताब से गाइडेंस नहीं मिलती। इसीलिए फरमाया वमन असलम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कसीबा। और इस शख्स से बढ़कर फिर कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ घड़े, और ऐसे लोग अपने रब के हजूर पेश होंगे और गवाह शहादत देंगे कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ खड़ा था। सुनो अल्लाह की लानत है जालिमों पर, इन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं और इसके रास्ते को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखरत का इनकार करते हैं। वो जमीन में अल्लाह को बेबस करने वाले न थे और न अल्लाह के मुकाबले में इनका कोई हामी था। अब बस इनके लिए दोहरा अजाब है, ना वो किसी की सुन सकते हैं और ना खुद ही इनको कुछ सोचता है। ये वो लोग हैं, हाईलाइट कीजिएगा, वलाइकल्लज़ीना खसिरू अन्फुसहुम वदल्लाहुम मा कानू यफ्तरून। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला, और वो सब कुछ इनसे खो गया जो उन्होंने घड़ रखा था। नागुजीर है कि आखरत में वो ही सबसे बढ़कर घाटे में रहे। हाँ, रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और वो अपने ही रब के हो गए। अखबतु इला रब्बिहिम। इख़बात क्या होता है, ईमान का खुलासा। याद रखिए, संजीदगी कामयाबी की दलील है। दुनिया की कामयाबी भी संजीदा लोगों को मिलती है, आखिरत की भी। जब लोग दुनिया में अल्लाह की हदों को पार करते हैं, दुनिया में भी नाकाम होते हैं। जब आखिरत के नाते से हदों को पार करते हैं तो भी कामयाब नहीं होते। इसी तरह जो अल्लाह की हदों में रहकर काम करेगा वो फायदे में, और इसके बरक्स वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानियां करें, खसीरों अनफुसहुम। आप इस आयत के नीचे लिख लीजिए, बैंक करप्टेड हो गए। वो लोग जिन्होंने इस दुनिया में अपने आप को रखा और अल्लाह को नाराज किया, वो बैंक करप्ट हो गए। और इसके बरक्स अखबतु हम्बल, गुनाह करके तो डरना, नेकियां करके भी डरना, इसको इखबात कहते हैं। मेरी नेकी मेरे अमल की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की रहीमी की वजह से कबूल हुई है, इस फीलिंग को इखबात कहते हैं। अल्लाह में मुखबित बना दे। उलाइक असहाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, यकीनन वो जन्नती लोग हैं और जन्नत में हमेशा रहेंगे। इन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी अंधा बहरा, सोचिए ब्लाइंड भी और डेफ भी है, और दूसरा हो देखने और सुनने वाला, सुनता भी है देखता भी है, क्या ये दोनों यकसा हो सकते हैं? बोलिए, जवाब दें सब। क्या तुम इस मिसाल से कोई सबक नहीं लेते? क्या मिसाल है? अगली आयतों में अंबिया कराम आए, जो अंधे बहरे थे उनकी बात ना मानी, वो तबाह हो गए, और जिन्होंने मान ली उनको अल्लाह ताला ने यहाँ देखने और सुनने वाला कर दिया। अब मेरे और आपके फैसले का वक्त है, हम भी इस कुरान को पढ़ें। कितने लोगों के कानों में कुरान जा रहा है और कितनों के दिल में जा रहा है, ये इस कुरान के बाद का अमल हमारा बताएगा। कैसे? फरमाया वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। और ऐसे ही हालात है जब हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा था, उन्होंने कहा मैं तुम लोगों को साफ साफ खबरदार करता हूँ। देखिए, नबियों की दावत में कोई हैंकी वैंकी नहीं है, इफ्स एंड बट, यस एक्चुअली, इफ यू डू दिस ओके, बट आई नो दिस। जो दीनदार इस तरह की कंफ्यूजिंग और डाउट प्रोड्यूसिंग बातें करते हैं ना, वो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं क्या करें, किससे पूछे, जो पूछे, कोई कुछ कहते, कोई कुछ, कर लो तो भी ठीक है, हाँ पर रुक तो नहीं सकते, हाँ नहीं करना चाहिए पर आज कैसे रुकें, हाँ वाकई बुरी चीज है लेकिन अब हमारे लिए भी। और एक और सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब इतने बड़े बड़े मसले हैं कुरान में, इतने हराम हलाल पे पहुंचते हैं, फिर कई दीनदार भी उसमें क्यों उलझे हुए? तो याद रखिए एक बात, हमेशा ना मुझे देखें ना अपने किसी साथी को देखें, हम क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ क्या अमल है, हमारी जिंदगी क्या, हमें ना देखें इस कुरान को देख लें। एक दफा कुरान पढ़ाने वालों से ऊपर उठ के इस कुरान को पढ़े, ये क्या कहता है, तो आप लोगों में नहीं खोएंगे। लोग लोगों की बेअमली देखकर कुरान को काबिले अमल नहीं करार पाते। तो अल्लाह ताला में तौफीक दे के नबियों को जो दावत थी वही दावत हो। सीधी साफ बात है, क्या बात है, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, वरना मुझे अंदेशा है कि तुम पर एक रोज दर्दनाक अज़ाब आएगा। जब आप में इसकी कौम के सरदार जिन्होंने इसकी बात मानने से इनकार किया बोले हमारी नजर में तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो, बस एक इंसान हो हम जैसे। और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस इन लोगों ने जो हमारे यहाँ अराजिल हैं, अराजिल कौन है, पंजाबी में कहते हैं कमी कमीन, छोटे लोग, छोटी जात के लोग, लोगों ने इंसानों को भी दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ को कहा कि ये भगवान के सर से पैदा हुए, कुछ को कहा उसके पांव से पैदा हुए, और इंसानों में ऐसी तकसीमें कर दी, और नीची जात वाले तो कभी ऊपर हो नहीं सकते। उसने कहा ये क्या बेचारी मासियां, मेड और ड्राइवर, ये आपकी महफिल में आते हैं, बाकी को पढ़ा लिखा कोई आता है, जरा दिखाएं हमें। देखिए नबियों के साथ कैसे आके मगजमारी करते थे, कहते थे आप बेवकूफ, बातों में आए हुए लोग सुन रहे हैं, कोई अक्लमंद तो आपके पास आता नहीं, और बाकी रह गए ये भी, ये बेसोचे समझे आपकी पैरवी कर रहे हैं, और हम कोई ऐसी चीज आप में नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बड़े हो। अना जिसमें अना होगी उसको वक्त के नबी में भी कोई खूबी नहीं दिखेगी। कहते हैं आपकी तो कोई खूबी नहीं, जाहिर प्रस्त है ना। कहते थे आपका घर हमारे जैसा घर नहीं, हमारा घर आपसे बड़ा, आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी जैसी नहीं है, और आपके पीछे आगे नौकरों की वो लाइनें नहीं है जो हमारी है। तो याद रखिए जाहिर प्रस्ती हक प्रस्ती के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जो लोग अपेरेंटली चीजों से इंप्रेस हो जाते हैं ना, फिर वो हक से दूर हो जाते हैं। तो लिहाजा ये तो बातों में आ गए, हम तो नहीं आएंगे। और इखबात का मुतजाद क्या है, मुतकब्बिर। इसलिए हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो बल्कि आपको झूठा समझ रहे। इमेजिन करें, बातों ही बातों में हजरत नूह को कितनी सुना गए हैं, आप झूठे, आप ये बोला, लेकिन उनका ठंडा जवाब, लोग आपको बुरा के आपके ठीक है, ओके फाइन, यस, कुछ और कहना है आपने हमें, कह दीजिए, चलिए अल्लाह बेहतर जानते हैं हम क्या। और अगर आप अपनी जात के दीवार में घंटा लगा देंगे तो दूसरों को दीन नहीं मिलेगा। आज दीनदारों को अपनी सफाइयां पेश करने की बजाय कुरान पेश करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। जवाब सुनिए हजरत नूह का, उन्होंने कहा बिरादराने कौम, प्यार से भाई कह रहे, वो गालियां दे रहे हैं, झूठा कह रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, कह रहे हो मेरे भाई हो, प्लीज माय ब्रदर्स लिसन टू मी, जरा सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली शहादत पर कायम था, फिर इसने मुझ पर अपनी खास रहमत भी कर दी, मगर वो अब तुमको नजर नहीं आई। कौन सी रहमत? नबूवत और इल्म की। तो आखिर तुम्हारे पास क्या जरिया है कि तुम मानना ना चाहो और हम जबरदस्ती इसको तुम्हारे ऊपर चिपक दें, हम इसको जबरदस्ती तुम्हारे सर पर चिपक दें। आज भी लोगों को दीनदारों की दौलत नहीं नजर आती जो कुरान की सूरत में उनके घर में बसती है, लेकिन दिलों में जब बड़ाई होती है दुनिया की तो इंसान को ये बात समझ नहीं आती। काय बरादराने कौम, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल भी नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, और मैं इन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी, और वो आप ही आप अपने रब के हजूर जाने वाले हैं, मगर मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। आपको एक एक लफ्ज में से दर्द मंदी दिख रही है। वो नहीं चाह रहे कि कौम ये गलत रवैया अख्तियार करे, बदतमीजी से बात नहीं करनी, इस पे अमल लिख लीजिए, कोई जितना आपके मुंह लगे आपने बदतमीज नहीं होना। ये नहीं करा कि नेक्स्ट क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। मैं उनको धक्के देने से बाज रहा जिन्होंने मेरी बात मानी, और वो आप अपने रब के हजूर जाने वाले हैं, मगर मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो, और ऐ कौम अगर मैं इनको धुतकार दूं तो अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा? तुम लोगों की समझ में क्या इतनी बात भी नहीं आती? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, ना मेरा ये दावा है कि मैं फरिश्ता हूँ। यहाँ से देखिए नबी अपना प्रोफाइल कितना लो रखते थे, डाउन टू अर्थ, लोग अपनी बातें ज्यादा बड़ी करके नहीं पेश करते। वो कहते मैंने कब कहा कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करता। और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें हकारत से देखती हैं, इन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी, इनके नफ्स का हाल अल्लाह ही जानते हैं, अगर मैं ऐसा कहूँ तो जालिम हूँ। यहां से क्या पता चला कि दीन की तरफ बुलाने वाले के पास सबसे बड़ा हथियार दलील का है और अपनी बात को पेश कर देना, इसमें उलझने की बजाय वो अपने कामों में लगा रहे।